Krishna. पिछले कुछ दिनों से पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी में बहुत ही सुंदर उत्सव चल रहा है श्री जगन्नाथ जी के संबंध में। ये रथ यात्रा महोत्सव, इसके पहले इसके दौरान बहुत ही अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के करीब 15 दिन पहले श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का स्नान यात्रा होता है, जब जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर के प्रांगण में, जहां सब लोग आसानी से दर्शन कर सकते हैं, वहां बैठा कर कई बड़े बड़े हंडियों में स्नान किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात जगन्नाथ जी थोड़ा बीमार पड़ जाते हैं और वहां उन्हें उस समय दर्शन नहीं होता। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब वहां निवास करते थे, वो अलारनाथ चले जाते थे, क्योंकि बिना जगन्नाथ जी के दर्शन वो सहन नहीं कर पा सकते थे विरह में। अलारनाथ भगवान का सुंदर स्वरूप है, वहां भी चतुर्भुज विष्णु का, तो वहां रहते थे। और जगन्नाथ जी के विरह में आज भी हम देखेंगे, अलारनाथ मंदिर के बगल में एक पत्थर का चट्टान है, जहां महाप्रभु लेटते थे और भगवान जगन्नाथ जी के विरह में क्रंदन करते थे, इतना कि वो पत्थर भी पिघल गया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का जो इंप्रेशन है, चिन्ह वहां है पत्थर के ऊपर। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन था। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज न केवल हम जगन्नाथ जी की महिमा जान पाते हैं, बल्कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा जो महोत्सव है, इसका जो अंतरंग लीला है, ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सर्वोच्च अंतरंग लीला जगन्नाथ जी का, ये हम समझ पाते हैं। अनर्पित चरिंचिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतो ज्वरसाम सुभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर द्युतिकदंब संदीपितः सदा हृदय कंधरी सुरतुवा सचिनंदन। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का योगदान क्या है, अनर्पित मतलब इससे पहले कभी दिया नहीं गया, चरिम चिरात बहुत दीर्घ काल से, करुणया अवतीर्ण कलौ, वो करुणामयी अवतार इस कलयुग में आए, समर्पयितुम देने के लिए हमें, क्या उन्नत उज्ज्वल रसाम, उज्ज्वल रस यानी भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च रस, माधुर्य रस, स्वभक्ति श्रियम उन्हीं के भक्ति का ऐश्वर्य, हरि ही साक्षात श्री कृष्ण, पुरट सुंदर द्युति कदंब संदीपितः श्रीमती राधा रानी के अंग की कांति और उनकी भावना को स्वीकार करके प्रकट हुए हैं। सदा हृदय कंदरे स्फुरत हुआ शचिनंदन, कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि मेरे हृदय के अंतरंग में इनकी कृपा प्रकट हो। चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिखाया कि किस तरह से हम भगवान को अपने हृदय में आमंत्रित कर सकते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा कई सदियों से चली आई है, पर जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले जो गुंडीचा मार्जन है वो इससे पहले नहीं हुआ था। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे प्रदर्शित किया। एक दिन पहले शायद आप लोगों ने सुना है, श्री चैतन्य महाप्रभु काशी मिश्रा को बुलाए, जो जगन्नाथ मंदिर के जो उत्तराधिकारी हैं उनको बुलाए, सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाए, और उन्होंने कहा कि मैं कल गुंडीचा मंदिर का मार्जन करना चाहता हूं। जगन्नाथ रथ यात्रा के एक दिन पहले उन्होंने अपना हृदय प्रकट किया। तो उन्होंने कहा, काशी मिश्रा इत्यादि ने, क्या आपको क्या करने की जरूरत है, सिर्फ आप आदेश कीजिए, हम लोग करेंगे। महाप्रभु ने कहा नहीं, मैं खुद करूंगा। महाराज प्रताप रुद्री बहुत आनंदित हुए, उन्होंने बोले जो चाहिए, उनके जो उत्तराधिकारी थे उस मठ जगन्नाथ मंदिर के, उन्होंने कहा है कि महाराज प्रताप रुद्र ने हमें आज्ञा दी है कि कोई भी चीज महाप्रभु कहे तुरंत कर देना, तो बताइए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे 100 झाड़ू और 100 बड़े बड़े हंडी चाहिए मुझे। तुरंत ले आया गया। अगले दिन सुबह स्नान पश्चात दर्शन के बाद महाप्रभु सारे अपने भक्तों को लेकर गुंडीचा में गए। सारे भक्तों को चंदन लगाया सबसे पहले, उनकी पूजा की, सारे वैष्णवों की, कि जो आप सेवा करने के लिए जा रहे हो उसका महत्व दिखाया। और खुद कौन से ऐसे अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण के जिन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लिया और झाड़ू मारा? कोई अवतार है? कोई अवतार, मेरा चैलेंज, जो झाड़ू लेके झाड़ू मार रहे। आपोनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचार से श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आकर भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। अपने हाथ में झाड़ू लिए, भक्ति वैभव पुरी महाराज प्रभुपाद जी के गुरु बंधु, वो जब ये लीला कहते थे आंखों में आंसू आ जाता था उनका, बोले कौन सा ऐसा अवतार है हाथ में झाड़ू लिया, हमको दिखाने के लिए कि अगर रथ यात्रा के द्वारा हम अपने आप को अपने हृदय में लाना चाहते हैं भगवान को, तो कितना उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर। बड़े उत्साह के साथ मार्जन करना शुरू किए, और उस समय उनका उत्साह पूरे जितने सारे भक्त थे उन सबके उत्साह से दुगुना था। सबको बोले तुम लोग जितना कचरा निकाल रहे हो एक जगह इकट्ठा करो। सब भक्तों ने एक एक ढेर लगाया, और महाप्रभु का अकेला जो ढेर था उस सबके ढेर अगर मिक्स कर देंगे उसका दुगुना था, इतना उत्साह। क्यों? क्योंकि आतुरता, इतनी प्रसन्नता कि कल जगन्नाथ जी यहां आ रहे हैं। उस मंदिर को उन्होंने इस तरह से मार्जन किया कि वो अंत में चमक रहा था एकदम, ऊपर नीचे बाजू में एक एक छोटा जो क्रैक है उसमें से भी पहले झाड़ू मारे, फिर धूल निकाल, फिर और एक बार झाड़ू मारे, उसके बाद पानी ऊपर से नीचे तक फेंका, फिर पानी साफ किया, उसके बाद फिर अपने ही कपड़े से पोंछकर साफ करने लगे, और अंत में मानो आईने जैसा चमक रहा था। और कृष्णदास कविराज कहते हैं न केवल गुंडीचा मंदिर ऐसा चमक रहा था, सारे भक्तों का हृदय चमक रहा था, बहुत ही शीतल और स्वच्छ हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो तरीका है, हमें सिखाया है, वो भी यही है, चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण के समान मार्जन किए, और हमें बताया कि ये केवल साल में एक बार महाक्लीनिंग नहीं, हर रोज करना चाहिए। और ये कौन सा झाड़ू है? ये हरे कृष्ण महामंत्र का झाड़ू, चेतो दर्पण मार्जनम। और अगर अच्छी तरह से करेंगे, स्वच्छ करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से भगवान आकर्षित होंगे उस स्थान में। सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद अमोघ जब निंदा करता था महाप्रभु का, और सार्वभौम भट्टाचार्य उसे भगाने का प्रयास करते थे, अगले दिन उसको कॉलरा हो गया, मर रहा था वो, महाप्रभु आए, उसके छाती पर हाथ रखे, तुरंत कॉलरा बीमारी चलाई गया और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। महाप्रभु ने कहा, अरे तू इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ है, तेरे हृदय में तू क्यों इतना गंदगी रखा हुआ है, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ऐसी गंदगी क्यों रखा हुआ है? ब्राह्मण का हृदय स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, निश्चित रूप से तब भगवान का निवास स्थान है वो, भगवान प्रकट होंगे वहां। तो जिस प्रकार जितना मंदिर साफ करते हैं जगुंडीचा, उतना जगन्नाथ जी निश्चित रूप से बड़े आतुरता से आते हैं, इसी तरह से जितना हम अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं, भगवान निश्चित रूप से उस जगह में प्रकट है वहां पर प्रकट होते। इसके तात्पर्य में, एक श्लोक के तात्पर्य में, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के तात्पर्य के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी ने 1.5-2 पन्ने का तात्पर्य लिखा है, और उसमें बताते हैं कि किस प्रकार की, अलग अलग प्रकार की गंदगी है जिसे हम साफ करते हैं, हमें साफ करना है। बहुत सुंदर से वर्णन है, आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे गुंडीचा मार्जिन के प्रसंग में, बहुत सुंदर से, पहले पहले स्थूल धूप निकाल, धूल निकाला, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े, घास के, घास फूस इत्यादि, उसके बाद धूल निकाला, उसके बाद सूक्ष्म जो क्रैक में अटके हुए उन सब धूल को निकाला, फिर पानी से डाल के स्वच्छ किया। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु दिखाए कि स्थूल से लेकर सूक्ष्म जो अनर्थ है उसको निवारण कैसे करना चाहिए, कितने उत्साह के साथ, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहितुकी त्वयि। शिक्षा सकम के अंदर उनके जीवन में जो जो प्रमुख पाठ जो सिखाए, शिक्षा, वो शिक्षा सकम के अंदर ही है। तत्पश्चात अगले दिन बड़े आतुरता के साथ भक्तों को लेकर पांडु विजय दर्शन करने गए, जब पांडी बोलते हैं आजकल उसे, जगन्नाथ जी को लाकर रथ पर चढ़ाया जाता है, दर्शन किया उन्होंने। तत्पश्चात 4 अलग अलग पार्टी बनाए, 3 पीछे 4 सामने, 7 पार्टी बनाए, और मृदंग करताल के साथ कीर्तन करने लगे, और जो उत्साह से कीर्तन किए, कहा जाता है कि उड़ीसा के लोग कभी देखे नहीं थे ऐसा कीर्तन, और जो भी दर्शन करता था वो खुद नाचने लगता था इस कीर्तन, आकर्षित हो जाते थे उस कीर्तन के अंदर, प्रेम कीर्तन। महाराज प्रताप रुद्र भी आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसे मैंने कई भक्त जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आते मैं देखा हूं, पर ऐसे भक्त, ऐसे तेजोमय भक्त और ऐसा कीर्तन मैंने कभी नहीं देखा। तो गोपीनाथ आचार्य बोले हाँ, क्योंकि ये कृष्ण का प्रेम कीर्तन है, गोलोक रो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। और महाप्रभु ने दिखाया कि जगन्नाथ जी चल रहे हैं, भक्तों की भक्ति के खींचने से, ये कोई अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं चल रहे हैं। जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं, हमारे खींचने से नहीं चलते वो। ये भी दर्शन कराया उन्होंने, एक जगह पर रथ रुक गया, हिलने रहा। महाराज प्रताप रुद्र ने पहलवानों को बुलाया, शायद कोल्हापुर के होंगे वो लोग उस समय। सारे पहलवान आए, पूरा ताकत लगा के खींच रहे, हिला नहीं, एक इतना भी हिला नहीं, एक इंच भी, एक मिलीमीटर। तत्पश्चात हाथियों को बुलाया, हाथियों को लगाया दोनों रस्सी में और खींचने लगे और हाथियों को मारने लगे, जोर जोर से चिघाड़ते हुए वो सामने जा रहे थे, कुछ नहीं। फिर महाप्रभु बोले सब हाथियों को हटाओ, सब लोगों को हटाओ, सबको हटा दिया और बोले रस्सी बोले हमारे इन वैष्णवों के हाथों में दे दो। ओ एक से बढ़कर एक, पतले पतले कौन, वैष्णव कितने मोटे होते हैं, एक दो होंगे ऐसे, बस साधारण तो वैष्णव मतलब क्या वेजिटेरियन प्रसाद खाने वाला। उनके हाथ में दिए और उन्होंने पकड़ा, बस ऐसा खींचा भी नहीं, सिर्फ पकड़ के रखे थे। महाप्रभु रथ के पीछे गए और अपना सर जो था उस रथ पे लगाए और धकेलने लगे, गड़गड़ गड़गड़ एकदम जोर से चलने लगा। भक्तों के हाथ में रस्सी था, अपने हाथ चलने लगा। उन्होंने दिखाया श्रीमती राधा रानी के प्रेम से जगन्नाथ जी जा रहे हैं। जगन्नाथ जी जो हैं जिस मंदिर में रहते हैं उसको कहते हैं नीलाचल, अचल अचल यानी पहाड़, नीलाचल नीलाद्री। वो वैकुंठ द्वारका धाम है और गुंडीचा मंदिर जो है उसे कहते हैं सुंदराचल और वो वृंदावन से अभिन्न है। तो महाप्रभु बड़ी उत्सुकता और तीव्रता के साथ बड़े प्रेम के साथ कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी को वृंदावन ले जा रहे हैं। श्रीमती राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन की, मन ही मन उन्होंने एक रथ बनाया और अपने हृदय में खींचते हुए उन्हें वृंदावन ले गई और यही वो रथ यात्रा सूचित करता है ये लीला। तो वहां ले जाने के बाद 9 दिन तक जगन्नाथ जी गुंडीचा में रहते हैं। आज 6ठा दिन है और 3 दिन रहेंगे वो। कल जो था 5वां दिन था और कल का जो दिन है उसको कहते हैं हीरा पंचमी। कल एक बहुत मंगलमय दिवस था, वक्रेश्वर पंडित का तिरुभाव दिवस और हीरा पंचमी। वक्रेश्वर पंडित जो थे श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग शिष्यों में एक थे, पार्षदों में एक थे, अनुयायियों में एक थे। वो वक्रेश्वर पंडित कहा जाता है गौर गणोदेश दीपिका पुस्तक में कि वो भगवान के जो चतुर प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न जो विस्तृत रूप हैं वैकुंठ में, उनमें से अनिरुद्ध है वक्रेश्वर पंडित जी। और वक्रेश्वर पंडित के द्वारा एक शाखा श्री चैतन्य महाप्रभु का हुआ है और उनके महान शिष्य ध्यानचंद्र गोस्वामी और गोपाल गुरु गोस्वामी। गोपाल गुरु गोस्वामी आपको मालूम होगा छोटे बच्चे थे 5 साल के, तो एक व्यक्ति क्या सुबह का काम लोटा लेके गए। वो एक भक्त थे, 24 घंटे हरिनाम लिया करते थे। तो वो जब सुबह सुबह लोटा लेके गए जंगल में तो उस समय भी हरिनाम ले रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं 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 मल विसर्जन करते वक्त हरिनाम नहीं लेना चाहिए। तो एक हाथ में लोटा और एक हाथ में जिह्वा को पकड़ लिया और ऐसे पकड़ के बाहर आए। तो गोपाल गुरु, गोपाल छोटा सा बालक गोपाल, उसने कहा ये क्या जिह्वा हाथ में लेके घूम रहे हो, क्या है? तो बोले रे बहुत बड़ा अपराध हो गया आज। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले नहीं, मैं मल विसर्जन करते वक्त मैं बोल रहा था ऐसा अशुद्ध काम कर रहा हूं, उस समय शुद्ध नाम कैसे लेना चाहिए, इसीलिए मैं जीवा को पकड़ के रखा, पर फिर भी हरिनाम निकल रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बोले तो क्या हुआ, क्या तकलीफ है? बोले हरिनाम इतना, तुम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को नहीं जानते? कीर्तनीय सदा हरि, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है यह हरिनाम इतना पवित्र है कि कोई भी अवस्था में किसी भी स्थिति में कहीं भी लिया जा सकता है। गोपाल के इतनी दृढ़ता पूर्वक इस वैष्णव को प्रचार करते हुए देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे ये तो मेरा भी गुरु है। तब से ये छोटा बालक गोपाल गुरु नाम से प्रसिद्ध हो गया और आगे बढ़कर वो गोपाल गुरु गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों में महान आचार्य हुए और वो थे वक्रेश्वर पंडित जी के शिष्य। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका वर्णन करते हैं वक्रेश्वर पंडित जी का, और वहां उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कोई दूसरा पुस्तक ले आए कहते बहुत सुंदर एक श्लोक है जहां कहते हैं वक्रेश्वर पंडित की खासियत यह थी कि शिवास ठाकुर के घर में जब कीर्तन होता था वक्रेश्वर पंडित नृत्य किया करते थे और उनका नृत्य कैसा था, एक ही भाव में मतलब दिव्य आनंद में 72 घंटा लगातार नृत्य करते थे। हम लोग एक घंटा करते हैं तो थक जाते हैं, कभी धीरे करते हैं कभी जोर से करते हैं फिर थक जाते हैं। वक्रेश्वर पंडित एक ही भाव से दिव्य आनंद में 72 घंटा लगातार नृत्य करते थे और उनकी कीर्तन में साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, कीर्तन गाते थे। एक दिन कीर्तन करते करते 72 घंटा कीर्तन करने के बाद महाप्रभु के चरण में वक्रेश्वर पंडित पड़ गए और भीख मांगने लगे, प्रभु मेरी प्रार्थना है कि 15,000 गंधर्व को आप बुला लीजिए और वो गंधर्व गाएं और मैं कीर्तन करूं। ऐसे क्यों बोले गंधर्व? बोले गंधर्व जो हैं देवताओं के संकीर्तन प्रोग्राम में उनको बुलाया जाता है। जैसे हमारा कुछ बड़ा संकीर्तन होता है तो कोई खास कीर्तनीय को बुलाते हैं कि कीर्तन अच्छा हो तो सबको थोड़ा अच्छा लगता है, तो गंधर्वों को बुलाया जाता है, गंधर्व बहुत अच्छे गाते हैं। तो बोले 15,000 गंधर्वों को बुलाइए और गंधर्वों के अंदर वो शक्ति होती है के लगातार कई दिनों तक वो गा सकते बिना थकावट के, बिना रुकावट बिना थकावट लगातार गा सकते कई दिनों तक। इसीलिए वक्रेश्वर पंडित बोल रहे हैं 15,000 गंधर्वों को बुलाइए कीर्तन करने दीजिए, तब मैं नाचूंगा, तब मैं नृत्य करूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए। चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंदित हुए और महाप्रभु कहने लगे के हे वक्रेश्वर तुम मेरे एक पंख हो, अगर मैं एक बहुत बड़ा पक्षी हूं तो तुम मेरे एक पंख हो, काश मेरा और एक पंख होता तो मैं आसमान में उड़ के चला जाता। मतलब ऐसा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं तुम्हारे जैसा। चैतन्य महाप्रभु के मुख से वक्रेश्वर पंडित जी का गुणगान। वक्रेश्वर पंडित जी की और एक खासियत थी, सार्वभौम भट्टाचार्य के पिताजी जो थे विशारद, उनके गांव में एक बहुत ही सुंदर भागवत कथा करने वाले थे भागवतकार, और वो थे देवानंद पंडित। देवानंद पंडित बड़े प्रसिद्ध भागवतकार थे, पर दुर्भाग्यवश उनका जो निष्कर्ष था वो मायावाद था। एक बार देवानंद पंडित के सभा में श्रीवास ठाकुर जाके बैठे, और श्रीवास ठाकुर जब भागवत सुने तो दिव्य आनंद से विभोर होकर लुढ़कने लगे, उनके आंखों से आंसू आने लगे, अष्टविकार प्रकट हो गए और लुढ़कने लगे। तो देवानंद पंडित के मूर्ख शिष्यों ने श्रीवास ठाकुर की उच्च स्थिति को न जानते हुए कहा कि भावुक आदमी है, उठा के फेंको इसको बाहर। एक पैर और एक दो हाथ पैर उठाए लिए, ऊपर ले जाके बाहर ले जाके उन्हें। शिवाज ठाकुर थोड़े समय के बाद उनको, और देवानंद पंडित ये देख रहे थे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, उनको रोका नहीं अपने शिष्यों को। कुछ समय के बाद शिवाज ठाकुर उठे और बहुत संकोच हुआ उनको कि क्यों मैं ऐसा सब किया, फिर वो चले गए चुपचाप। ये बहुत पहले की बात थी। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु जब 16 साल के करीब थे तो एक बार वहां से देवानंद पंडित के गांव के सामने से गुजरे और उन्होंने जोर जोर से देवानंद पंडित को डांटा, फटकारा उन्हें, बोले तुम्हारा भागवत कोई भी उपयोग नहीं है तुम्हारे भागवत सुन के। पर देवानंद पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु को पहचान नहीं पाया और उनकी अवहेलना की, बोले क्या है ये निमाई पंडित, क्या कहता है इसे क्या मालूम। उसके थोड़े दिन बाद वक्रेश्वर पंडित देवानंद पंडित के घर में एक दिन एक रात ठहरे और उन्होंने जब अपने मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा देवानंद पंडित को सुनाई तब देवानंद पंडित को बहुत दुख हुआ और तब उन्होंने स्वीकार किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। बाद में कुलिया में आकर, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद कुलिया ग्राम में आए, वहां देवानंद पंडित ने आकर उनके पैर पड़ा और माफी मांगा। तत्पश्चात देवानंद पंडित जो है भगवान के श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षदों में, अंतरंग पार्षदों में एक व्यक्ति हो गए। कहा जाता है कि देवानंद पंडित जो थे वो कृष्ण लीला में नंद महाराज के राज्यसभा में वो एक वेदों के गायक थे जिनका नाम था भागुरी मुनि, वो चैतन्य लीला में देवानंद पंडित थे। यानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने वक्रेश्वर पंडित के द्वारा पूरे विश्व को दिखाया है कि भक्तों की सेवा करने से भगवान के प्रति हमारा जो अपराध है वो भी चला जाता है, भक्तों की कृपा हो गई तो हम पर। तो ये वक्रेश्वर पंडित की महिमा। कल ये भी था हेरा पंचमी, तो उसके बारे में श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर से वर्णन है। हेरा मतलब क्या? हेरिबो आमी, देखना। हेरा मतलब देखना, और पंचमी का मतलब पंचमी, पांचवा दिन पूर्णिमा के बाद। तो हेरा पंचमी का मतलब है जगन्नाथ जी नीलाचल मंदिर से लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि मैं अभी जाके आता हूं रथ यात्रा में, और चले जाते हैं रथ यात्रा के कारण बनाकर द्वारका से वृंदावन जाना चाहते हैं, गोपियों के साथ वहां लीला करना चाहते हैं जगन्नाथ जी, इसीलिए रथ यात्रा का एक कारण बनाते हैं और वहां से गुंडीचा चले जाते हैं। चले जाने के बाद यहां लक्ष्मी जी राह देखती है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, क्रोधित हो जाती है और अपने सारे जो पार्षद हैं उनके देवियों को लेकर, सहेलियों को लेकर लक्ष्मी जी पालकी में बैठती है और उनकी पालकी एकदम ऐश्वर्यशाली और सारे उनके जो पार्षद हैं सब एकदम ऐश्वर्यशाली कपड़े पहनकर जगन्नाथ जी के पास जाते हैं और बोलते हैं बुलाओ तुम्हारे जगन्नाथ को, कितना देर से चला गया आया नहीं अभी तक। ओ बहुत दादागिरी होता है उधर। और जगन्नाथ जी के जितने सारे सेवक है ना सबको बंदी बना लेते हैं, लाके लक्ष्मी जी के चरणों में फेंकते हैं, बोले माफी मांगो इनसे, तब माफी मांगे। बहुत पिटाई करते हैं जगन्नाथ जी के सारे सेवकों को और बाद में वाद विवाद होता है, बाद में बोलते ठीक है ठीक है ठीक है भेजेंगे आप जाओ, और तब चली जाती है लक्ष्मी जी। पांचवें दिन आती है ये, फिर भी जगन्नाथ और चार दिन के बाद जाते। तो ये बहुत सुंदर लीला होती है। तो यहां चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, हेरा पंचमीर दिन आईला जानिया काशी मिश्रे को हे राजा सयत्न करिया। हेरा पंचमी का दिन आया, बहुत बड़ा उत्सव होता है वो। तो महाराज प्रताप रुद्र जिनको रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु की खास कृपा मिली थी, महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया, तब तक दर्शन भी नहीं दिए थे महाराज प्रताप रुद्र को, पर बालगंडी बगीचा में जब थे तो महाराज प्रताप रुद्र ने अपना सारा राज ऐश्वर्य का जो वस्त्र निकालकर एक मामूली भक्त एक वैष्णव का भक्त वेश पहनकर महाप्रभु के पैर दबाने लगे और गोपी गीत गाने लगे। महाप्रभु प्रसन्न हुए, उन पर खास कृपा की। तत्पश्चात महाराज प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के हेतु पांचवें दिन जब हेरा पंचमी आया तो बड़े उत्साह के साथ काशी मिश्रा के पास गए। यह जानकर कि हेरा पंचमी उत्सव आने वाला है, राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र से बड़ी सावधानी से बातें की। कल्य हेरा पंचमी होवे लक्ष्मी रो विजय, आई छे उत्सव करो जे न कभू नहीं होय। कल हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय, उसका दूसरा नाम है लक्ष्मी विजय, यह लक्ष्मी विजय उत्सव होगा। तुम इस उत्सव को इस तरह से मनाओ जैसा कि इसके पूर्व कभी न मनाया गया हो। आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे के नाम जप में या भगवान की भक्ति में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक अनर्थ निवृत्ति और दूसरा अर्थ प्रवृत्ति। आज सुबह चर्चा कर रहे थे, जप करते वक्त बहुत सारे विचार आते हैं, ध्यान पूर्वक जप होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे अनर्थ हैं, उन अनर्थ को निकालने का प्रयास करते रहना चाहिए। पर आप जितना भी निकालो ये अनर्थ समाप्त नहीं होते। अनर्थ के साथ लड़ते 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 पूरी जिंदगी चली जाएगी। केवल अनर्थ से लड़ना जीवन का उद्देश्य नहीं है, अनर्थ से लड़ने के लिए अर्थ प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, यानी एक ऊंचे रस का आस्वादन करना चाहिए। मान लीजिए एक भिखारी है, कई दिनों से भूखा है, उसको किसी ने एक सूखा रोटी दिया है और वो सूखा रोटी खाने वाला है, और आप जाके कहते हो ये सूखा रोटी खाने की चीज है फेंक दो। क्यों फेंकेगा? क्योंकि उसे उसके अलावा कुछ है नहीं उसके पास। पर अगर आप उसके सामने गर्मा गर्म एकदम 56 भोग लाके रखोगे तो उसको कहने की भी जरूरत नहीं, 56 भोग का प्लेट देखेगा अपने आप रोटी फेंकेगा। इस तरह से अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति करते रहोगे तो बोलेगा अरे कुछ तो चाहिए यार हमारे हृदय में, ये सब निकालेंगे तो रहेगा क्या। उसके जगह में अगर अर्थ प्रवृत्ति हो, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, एक ऊंचे रस का आस्वादन होना चाहिए। जब तक ऊंचे रस का आस्वादन नहीं होता आदमी को, तब तक निचला रस जो है छोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन जो है रस का लालायित है, उसे रस चाहिए, वो भौतिक रस का आनंद लेना चाहता है, क्योंकि उसे दूसरा कुछ रस उपलब्ध नहीं है। पर अगर एक ऊंचे रस का आस्वादन मिल जाए, भगवान के नाम कीर्तन का रस का आनंद मिल जाए, भगवान के सुंदर दर्शन का आनंद मिल जाए, भक्तों के संग में हरि कथा का आनंद मिल जाए, गौर अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भगत संगे, प्रणय भगत प्रेमी भक्तों के संग में जाकर भगवान ने जितने सारे लीला की, अलग अलग लीला स्थल में जाकर उन लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उस समय जो रस मिलता है वो रस का ये जो लालायित हो जाता है वो ही इस अनर्थों से अपने आप मुक्त हो सकता है। इसीलिए ये जो प्रभुपाद जी की कृपा से इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम जो भी ये कार्यक्रम करते हैं, वो सुबह का कार्यक्रम हो या रविवार के इस तरह सा संडे फिस्ट कार्यक्रम हो या कोई दूसरा कार्यक्रम हो या बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, अभी जन्माष्टमी उत्सव आ रही है, दूसरे सारे उत्सव हैं, बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। ये बड़ी तपस्या है हमारे लिए, आज ये तपस्या है क्योंकि उत्साह नहीं है, पर अगर उत्साह दिखाएंगे तो भगवान और उत्साह देंगे, अंदर से रस देंगे, और वो रस का जिसे आस्वादन हुआ वो दूसरे रसों को, इस भौतिक संसार के भौतिक रसों को त्याग सकता है। तो यहां हम देखते हैं महाराज प्रताप रुद्र कितने उत्साह के साथ कह रहे हैं कि कल हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय उत्सव होगा, तुम इस उत्सव को इस तरह से मनाओ जैसा कि इसके पूर्व कभी न मनाया गया हो। यह उत्साह है महाराज प्रताप रुद्र का, क्यों? क्योंकि कृपा मिली है उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का। महोत्सव महोत्सव करो ताइच्छे विशेष संभार, देखी महाप्रभु याइच्छे होए चमत्कार। राजा प्रताप रुद्र ने कहा तुम इस उत्सव को इतने शानदार ढंग से मनाओ कि इसे देखकर महाप्रभु पूरी तरह प्रसन्न और चकित हो जाए। यह उत्सव का उद्देश्य है कि कृष्ण प्रसन्न हो, हम प्रसन्न हो, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम प्रसन्न हो या नहीं प्रसन्न हो, ये मन ऐसा ही, कुछ भी करो अप्रसन्न रहता है, इसको कितना भी खुश करो। कृष्ण अगर प्रसन्न हो जाए तब हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। तो महाप्रभु को इनका उद्देश्य है महोत्सव ऐसे शानदार तरीके से हो कि महाप्रभु चकित हो जाए, महाप्रभु आनंदित हो जाए। ठाकुरेरो भंडारे आर अमारा भंडारे, चित्र वस्त्र किंकिनी आर छत्र चामरे, मेरे भंडार में तथा अर्चा विग्रह के भंडार घर में जितने भी छपे कपड़े घंटियां छाते और चामर हो इन सबों को ले लो। महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र कह रहे हैं भगवान के भंडार तो दूर, मेरे भंडार से भी ले लो, खोल दो भंडार को, लगाओ भगवान की सेवा में। ध्वजावृंद प्रताका घंटाए करो मंडन, नाना वाद्य नृत्य डोलाए करो साजन, सभी तरह की झंडियां तथा झंडे और घंटे एकत्र करो, तब वाहन सजाओ और विभिन्न संगीत तथा नृत्य मंडलियों उसके साथ हो लें, वाहन को आकर्षक ढंग से सजाओ, प्रसाद की मात्रा को भी दुगुना कर दो। ये थोड़ा मतलब की बात है। बोले रथ यात्रा हाइते याई थे हो चमत्कार, द्विगुण करिया करो सब उपहार, रथ यात्रा में जितना प्रसाद बना था उसका दोगुना बनाओ। उत्सव की व्यवस्था ऐसी हो कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों समेत स्वच्छंद पूर्वक बिना किसी कठिनाई से अर्चा विग्रह का दर्शन करने जा सके। इस तरह से महाप्रभु के अपने महाराज प्रताप रुद्र का कहने पर सारे उनके सेवक लग गए इस बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े शानदार से इस लक्ष्मी विजय उत्सव को मनाने के लिए, हेरा पंचमी उत्सव को मनाने के लिए। प्रातः काले महाप्रभु निज गण लैया जगन्नाथ दर्शन कैला सुंदरा चले जाइया। महाप्रभु अपने भक्तगणों को लिए और सुंदराचल गए। एक्चुअली महाप्रभु जो थे 9 दिन तक जगन्नाथ मंदिर तो जाते नहीं थे, क्योंकि जगन्नाथ जी सुंदराचल में है। उद्यान, कौन सा उद्यान है वो? बीच में उद्यान आता है एक, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान। जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में 9 दिन रहा करते थे महाप्रभु उस समय। 9 दिन तक अपने घर गंभीरा भी नहीं जाते थे, पूरी रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते हैं वो सारे उद्यान में। और वहां सब नरेंद्र सरोवर में जाते थे और इंद्रदुम्न सरोवर में जाके कीर्तन होता था उनका, जल क्रीड़ा होता था। तो महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन के लिए सुंदराचल गए। नीला चले आईला पुनः भक्तगण संगे, देखी दे उत्खंटा हेरा पंचमी रंगे। और वहां से फिर जगन्नाथ मंदिर के पास आए। हेरा पंचमी वहां से निकलती है, लक्ष्मी जी वहां से निकलती है देखने के लिए। काशी मिश्रा प्रभु रे बहु आदर करिया, स्वगण सह भाल स्थाने बसाई ला लैया। काशी मिश्रा को पता चला महाप्रभु को अपने भक्तों की गण साकर एक ऐसा जगह बैठाए जहां अच्छी तरह से दर्शन हो। हम भी लोग भी जब जगन्नाथ रथ यात्रा में जाते हैं, सुंदराचल के पास जब जाते हैं, तो ऊंचे स्थान पर जाके बैठ जाते हैं, ताकि ये सारा जो जगन्नाथ जी को उठाकर सुंदराचल में ले जाते हैं अंदर, अच्छे तरह से दर्शन हो। तो काशी मिश्रा ने महाप्रभु को एक अच्छे स्थान पर बैठा दिया, ताकि अच्छे तरह से ये उत्सव का दर्शन हो। रस विशेष प्रभु रो सुनिते मन होइला, इस थासिया प्रभु स्वरूपे पूछिला। और वहां से लक्ष्मी जी आ रही है, महाप्रभु को रस का आस्वादन करने की इच्छा हो गई। महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, यद्यपि जगन्नाथ भगवान द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं और सहज उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वे वृंदावन देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो उठते हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, वृंदावन सम ए उपवन गण तहा देखी बारे उत्कंठित है मन। पड़ोस के बगीचे की ओर लक्ष्य करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये सारे बगीचे वृंदावन जैसी हैं, अतएव जगन्नाथ जी इन्हें फिर से देखने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हैं। साल में एक बार नीलाचल छोड़कर सुंदराचल भाग आते हैं, 9 दिन रहकर जाते हैं। बाहिर होइते करे रथ यात्रा छल, सुंदरा चले जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। बाहर से वे यह दिखावा करते हैं कि वे रथयात्रा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में वे वृंदावन की प्रतिमूर्ति गुंडीचा मंदिर अर्थात सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। नाना पुण्योद्याने तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवी रे संगे नाही लय की कारणे। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, भगवान रात दिन फूलों के बगीचों में लीलाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन वे अपने साथ लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं लाते? अरे सुंदराचल जा रहे हैं तो लक्ष्मी देवी को भी साथ ले चलो ना, क्यों नहीं ले जाते? स्वरूप दामोदर से पूछ रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधारानी, कृष्ण जो रे राधारानी की भावना है, और स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है? ललिता सखी। स्वरूप कहे सुनो प्रभु कारण इहार, वृंदावन क्रीड़ाते लक्ष्मीर नहीं अधिकार। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, हे प्रभु इसका कारण सुने, लक्ष्मी देवी को वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। आज भी बिल्व वन में वो तपस्या कर रही है यमुना के उस पार वहां रासस्थली है जहां लक्ष्मी देवी को प्रवेश नहीं है, तपस्या कर रही है बिल्व वन में वो। वृंदावन लीलाए कृष्णेर सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्णेर हरिते नारे मन। वृंदावन लीलाओं में एकमात्र सहायिकाएं गोपियां ही हैं, गोपियों के अतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकता। प्रभु को हे यात्रा छले कृष्णेर गमन, सुभद्रार बलदेव संगे दुई जन। महाप्रभु ने कहा, कृष्ण महारथ यात्रा के बहाने सुभद्रा तथा बलदेव के साथ जाते हैं। गोपी संगे जत लीला है उपवने, निगूढ़ कृष्णेर भाव केह नहीं जाने। उन बगीचों में गोपियों के साथ सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत गुह्य भाव हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, केवल महाप्रभु की कृपा से हम ये सब जान सक रहे हैं। अतएव कृष्णेर प्राकट्य न ही किछु दोष, तबे केने लक्ष्मी देवी करे एतो रोष। महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है तो फिर लक्ष्मी जी क्यों इतनी रुष्ट हो गई है, क्यों इतनी क्रोधित हो गई है, क्या कारण है। स्वरूप कहे प्रेमावती रो यही तो स्वभाव, कांते रो औदस्य लेशे होए क्रोध भाव। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव है कि वह अपने प्रेमी के उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। आपने हिंदी फिल्मों में भी देखा होगा, हीरो ने हीरोइन को एक अपॉइंटमेंट दिया है एक पार्क में कि 7 बजे आऊंगा डियर, 7:30 बज गया अभी तक आए नहीं, उपेक्षा कर रहे हैं, अवहेलना हो गई, फिर आते हैं 7:45, इस तरफ से मुड़ के आए, क्या करूं अभी तक 2-व्हीलर नहीं है, बस में आना पड़ा, टाइम लगा, 4-व्हीलर क्यों नहीं लेते, 2-व्हीलर क्यों। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव है कि वह अपने प्रेमी के उपेक्षित होने पर तुरंत क्रुद्ध हो जाती है। ये विकृत प्रतिबिंब है हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसका मूल स्वरूप यहां है। आदि रस, भगवान श्री कृष्ण रसराज हैं, वो जिस रस का आस्वादन करते हैं उसमें काम वासना नहीं है, लेश मात्र भी काम वासना नहीं है, ये शुद्ध लीला है। इस लीला के श्रवण करने से भी हमारे हृदय में जो काम वासना है हमेशा के लिए चली जाएगी, ये उनकी शक्ति है, ये पवित्रता है कृष्ण लीला की। हेन काले खचित याने विविध रतन सुवर्णेरो 14 लाख करी आरोहण। जब स्वरूप दामोदर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार बातें कर रहे थे तो लक्ष्मी जी का जुलूस निकट आ गया, वे सोने की पालकी में सवार थी जिसे 4 आदमी ले जा रहे थे और पालकी तरह तरह के रत्नों से सजी हुई थी। स्वाभाविक है लक्ष्मी देवी का जो है, पालकी के चारों ओर छाता चामर तथा झंडे झंडियों के लिए हुए बहुत लोग थे और इनके आगे गवैये तथा नर्तकियां थीं, दासियां जल पर घड़े चामर तथा पान की पिटारी लिए थीं, ऐसी सैकड़ों दासियां थीं, वे सभी आकर्षक वस्त्र धारण किए थी और बहुमूल्य हार पहने हुए थी। लक्ष्मी जी के जो सेविकाएं, लक्ष्मी जी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर आ पहुंची, उनके साथ उनके परिवार की अनेक सदस्याएं थीं और वे सभी सामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर रही थी। जब जुलूस आ गया तो लक्ष्मी जी की सारी दासियां भगवान जगन्नाथ के सारे प्रधान नौकरों को बंदी बनाने लगी, ये मामूली सेविकाएं नहीं है लक्ष्मी जी के, जगन्नाथ जी सेवक भी को भी बंदी बना देते लोग। दासियों ने जगन्नाथ जी के नौकरों को बांधकर उनके हथकड़ियां लगा दी और उन्हें लाकर लक्ष्मी जी के चरणों पर झुकने के लिए बाध्य किया, वे सभी धन लूटने वाले चोरों की तरह बंदी बना लिए गए। जगन्नाथ जी के जितने सारे सेवक थे ना, जो कोई चोर पकड़े जाते तो कैसे बांध के उनको फेंका जाता है, ऐसे फेंके लक्ष्मी जी के चरणों में। जब नौकर लक्ष्मी के चरण कमलों में समक्ष गिरते हैं तो वे अचेत रहते, बेहोश हो जाते, इतने जोर से फेंकते हैं उनको, उन्हें डांटा डपटा जाता है और भद्दी भद्दी गालियां दी जाती, खूब डांटते उनको पकड़ के, बेशरम कहीं के निर्लज्ज, हाँ 3 दिन से आया जगन्नाथ, भेजता क्यों नहीं वापस, चलो भेजो जल्दी। जब महाप्रभु के संगियों ने लक्ष्मी जी के दासियों को ऐसी प्रगल्भता देखी तो उन्होंने अपने हाथों से अपना मुख ढक लिया और हंसने लगे। जब लक्ष्मी जी इस तरह के सेविका इस तरह से फटकार रही थी, उसे देखकर महाप्रभु और सारे भक्तगण हंसने लगे। स्वरूप दामोदर ने कहा, तीनों लोकों में इस तरह का क्रोध नहीं है, कम से कम मैंने न तो देखा है न सुना है। जब कोई स्त्री उपेक्षित या निराश हो जाती है तो अहंकार के वश में अपने आभूषण उतारकर खिन्न होकर फर्श पर बैठ जाती है और अपने नाखूनों से फर्श पर रेखाएं खींचती हैं। मैंने इस प्रकार का गर्व कृष्ण की सबसे गर्वीली महारानी सत्यभामा में सुना है। मैंने समस्त रसों का खान वृंदावन की गोपियों में भी ऐसा मान सुना है, किंतु लक्ष्मी जी में मैंने अन्य प्रकार का मान देख रहा हूं। वे अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करती हैं, यहां तक कि अपने पति पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों को साथ ले जाती है। बाप रे, ऐसा मान मैंने कभी नहीं देखा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया वृंदावन के प्रकट होने वाले समस्त प्रकार के मानों का वर्णन कीजिए। स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, गोपियों का मान सैकड़ों धाराओं वाली नदी के समान है। और तत्पश्चात बहुत ही सुंदर तरीके से गोपियों के अलग अलग प्रकार की मान लीला जो बहुत ही गुह्य है, स्वरूप दामोदर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को इन लीलाओं का रसास्वादन कराया। ये वर्णन करने का न समय है न मेरी योग्यता है, तो इसीलिए आप चैतन्य चरितामृत के 15वां अध्याय में पढ़ लीजिए मध्य लीला में। पर इसके बाद का लीला वर्णन करूंगा। एमत आर्षभ भाव विभूषण यहां ते भूषित राधा हरे कृष्ण मन। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी उन विभिन्न भावों से अलंकृत एवं विभूषित हो जो कृष्ण को मन से आकृष्ट करते हैं। इस तरह से गोपियों तथा गोपियों में से श्रेष्ठ अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, उन गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी का मान वो भी लीला सुनाते हैं। और ये सब आस्वादन करते रहते हैं। अनंत कृष्ण लीला न जाय वर्णन आपने वर्णे न जदी सहस्र वदन। श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, भले ही वे सहस्र वदन अर्थात 1000 मुख वाले शेषनाग का अवतार लेकर उन्हें वर्णन क्यों न करें। अनंत देव अपने अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान अनंत की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, पर अभी भी वो समाप्त नहीं हुआ। यानी इनकी लीलाएं अनंत हैं। श्रीवास हसिया कहे, सुनो दामोदर, आमार लक्ष्मी रा देखो संपत्ति बिस्तर। अब श्रीवास ठाकुर वहां खड़े थे। आप लोगों को मालूम है श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि है वो। नारद मुनि थोड़ा मजाक करना चाहते थे, थोड़ा वैकुंठ भाव में चले गए और लक्ष्मी जी के पक्ष में आकर स्वरूप दामोदर से कहने लगे। इस बार श्रीवास ठाकुर हंस पड़े और दामोदर पंडित से बोले, महाशय सुनो तो, देखो तो कि मेरी लक्ष्मी कितनी ऐश्वर्यवान है। वृंदावनेरा संपद देखो पुष्प किशलाय गिरी धातु शिखी पिछ गुंज फलमय। श्रीवास ठाकुर ने कहा, ये वृंदावन क्या है? लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य को देखो, वृंदावन में क्या ऐश्वर्य है? जहां तक वृंदावन का ऐश्वर्य है, कुछ फूल हैं, कुछ टहनियां हैं, कुछ पहाड़ी खनिज हैं, कुछ मोर पंख हैं और कुछ ओ धुंधली सा लता पता क्या है? क्या ऐश्वर्य है तुम्हारे वृंदावन? जब जगन्नाथ जी ने वृंदावन जाने पर निश्चय कर लिया तो वे वहीं गए और इसे सुनकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या तथा चंचलता के अनुभव होने लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथ जी इतना ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन क्यों गए। उसकी हंसी उड़ाने का उद्देश्य से लक्ष्मी जी ने अपने को सजाने का काफी प्रबंध किया। लक्ष्मी जी चिढ़ाना चाहती थी जगन्नाथ जी को, इसीलिए और अच्छी तरह से ऐश्वर्यशाली भाव से यहां आई हुई है। तब लक्ष्मी की सेविकाओं ने जगन्नाथ की दासियों से कहा, जगन्नाथ के जो दासों से, जगन्नाथ के दास खड़े हुए थे, लक्ष्मी जी के दासियों ने कहा, तुम्हारे स्वामी ने लक्ष्मी के महान ऐश्वर्य को त्याग क्यों कर किया और कुछ पत्तियों फूलों और फलों के लिए श्रीमती राधा रानी के फूलों के बगीचे क्यों देखने गए? अरे ऐसे ऐश्वर्य छोड़कर उस जंगल में क्यों गए वृंदावन में? तुम्हारे स्वामी, लक्ष्मी जी की दासियां कह रही हैं, तुम्हारे स्वामी अत्यंत विदध्य है लेकिन तो भी वे ऐसा क्यों करते हैं? तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के समक्ष लाओ। इस तरह लक्ष्मी जी की दासियां जगन्नाथ जी के सभी दासों को बंदी बनाकर अपने कटी वस्त्रों से बांधकर उन्हें लक्ष्मी जी के समक्ष ले आई। जब जगन्नाथ जी के सारे दास लक्ष्मी के चरण कमलों के समक्ष ले आए गए तो उनको दंड दिया गया और उन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य किया गया। फिर सारी दासियां रथ पर लाठियों से प्रहार करने लगी। सोच लीजिए, जगन्नाथ जी का दास बनना है, लाठी पड़ेगी। और उन्होंने जगन्नाथ जी के दासों के साथ चोरों जैसे बर्ताव किया। अंत में जगन्नाथ जी के सारे दासों ने हाथ जोड़कर विनती की और उन्हें विश्वास दिलाया कि अगले दिन जगन्नाथ जी को लाकर पेश कर देंगे। अरे भाई छोड़ दो, कल ले आएंगे आपको जगन्नाथ जी को। तब लक्ष्मी जी शांत होकर अपने घर चली गई। देखो ना, हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य वर्णनातीत है। श्रीवास ठाकुर ने स्वरूप दामोदर से कहा, आपकी गोपियां दूध औंटने और दही मथने वाली लगी रहती हैं, किंतु मेरी ठाकुरानी लक्ष्मी तो रत्नों के सिंहासन पर बैठी रहती है। नारद मुनि के भाव में श्रीवास ठाकुर मजाक कर रहे थे। यह सुनकर महाप्रभु ने सारे के सारे दास हंसने लगे। महाप्रभु जी और सारे सब हंसने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा, अरे श्रीवास, तुम्हारा स्वभाव ठीक नारद मुनि जैसा ही है। भगवान का ऐश्वर्य तुम पर अपना सीधा असर कर रहा है। स्वरूप दामोदर वृंदावन का शुद्ध भक्त है। वह इतना भी नहीं जानता कि ऐश्वर्य क्या है, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति में लीन रहता है। तब स्वरूप दामोदर ने उलट कर कहा, अब ध्यान से सुनिए, स्वरूप दामोदर श्रीवास ठाकुर को वृंदावन की महिमा सुना रहे, क्यों जगन्नाथ जी नीलाचल छोड़कर सुंदराचल साल में एक बार आ जाते हैं और वहां से जाना नहीं चाहते। अरे श्रीवास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्य को भूल गए हो। वृंदावन का प्राकृतिक ऐश्वर्य एक समुद्र के समान है। द्वारका तथा वैकुंठ का ऐश्वर्य एक बूंद के बराबर भी नहीं है। वृंदावने साहजी को ये संपत्त सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत्तार एक बिंदु, परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण जहां धनी तहां वृंदावन धाम। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं और उनका पूर्ण ऐश्वर्य वृंदावन धाम में ही प्रकट होता है। चिंतामणि मय भूमे रत्नेर भवान, चिंतामणि गणदासी चरण भूषण। वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि से बना है। इसकी पूरी भूमि बहुमूल्य रत्नों से खान है और चिंतामणि का प्रयोग तो वृंदावन की दासियों के चरण कमलों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। चिंतामणि प्रकर सद्मशु, पूरा घर ये घिर किसका बना हुआ है? ईंट का बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ है और थोड़ा पेंट किया हुआ है। वृंदावन धाम जो है चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि यानी वो पारस पत्थर जिसके स्पर्श करने से जहां भी स्पर्श करो वो सोना बन जाता है। कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष यानी उस वृक्ष के नीचे आप जो भी इच्छा करोगे सब कुछ पूर्ण हो जाएगी, ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं। वृंदावन के कोई ग्वाल बाल ऑफिस में नहीं जाते क्योंकि सब कल्प वृक्ष है, जहां भी खड़े हुए जो भी चाहे मिल जाता है। कम से कम और कुछ नहीं तो इसके लिए तो कम से कम भक्ति करो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ सकते हैं। वृंदावन कल्प वृक्ष तथा लताओं का वन है और वृंदावन वासियों को इन्हीं वृक्षों के फल और फूल्स के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। ब्रजवासियों को आप पिछले कुछ महीनों में हमने बृहद भागवतामृत की चर्चा की, ब्रजवासियों को जब सारे मथुरा का ऐश्वर्य और द्वारका का ऐश्वर्य दिलाया गया तो बोले क्या कृष्ण समझते हैं कि हम इन ऐश्वर्यों के पीछे उनको प्रेम कर रहे हैं, क्या उनके बदले हमें ऐश्वर्य दिखाकर हम भुलाना चाहते हैं, क्या हमको इतना तुच्छ समझते हैं? ब्रजवासियों को ये चीजों से कुछ आसक्त नहीं है। प्रेम महाधन, वो प्रेम का धन, वो ऐश्वर्य का आस्वादन कर रहे हैं। अनंत काम धेनुता फिरे बने बने दुग्ध मात्र देन के हो नामागे अन्य धने। वृंदावन के काम धेनु हैं जिनकी संख्या अनंत है, वे एक जंगल से दूसरे जंगल में चरती है और केवल दूध देती है, लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये दूध ऐसा नहीं है, ये दूध पीने पर न केवल पेट भरता है, कोई दूसरी इच्छा नहीं होती। वृंदावन के लोगों की सहज वाणी संगीत जैसी लगती है और उनकी सहज चाल नाच जैसी प्रतीत होती है। वृंदावन का जल अमृत के समान होता है और वहां ब्रह्म ज्योति का तेज जो दिव्य आनंद से परिपूर्ण है साक्षात दृष्टिगोचर होता है। वहां गोपियां भी लक्ष्मी हैं और वे वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मियों को मात करती है, यानी उनके सामने उनसे भी श्रेष्ठ है। वृंदावन में भगवान कृष्ण अपनी संगिनी दिव्य वंशी को सदैव बजाते रहते हैं। श्रीय कांता कांतः परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि सदा स्वाद्यमपि च। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कथा गानम, ब्रजवासियों की जो ब्रज भाषा है उनके एक शब्द जो है भगवान के कानों में वो संगीत लगता है। क्यों? क्योंकि केवल कृष्ण को प्रसन्न हेतु वो बातचीत करते हैं, स्वेच्छा के लिए नहीं, अपनी कोई भौतिक इच्छाओं से नहीं। गमनम नाट्यम गमनम, हर एक चलना हर एक चाल जो है वो नृत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए है वो। चिदानंदम ज्योति ही परमपि तदास्वाद्यमपि च, सब कुछ रसमय है वृंदावन में, सबका जो फाउंडेशन है वो माधुर्य रस से भरा हुआ है, हर एक रस में माधुर्य है, ऐश्वर्य नहीं है माधुर्य है। बहुत सुंदर श्लोक हैं जिनमें वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी। जब श्रीवास प्रेमावेश होकर, हाँ, जब श्रीवास ठाकुर ने यह सुना तो वो प्रेमावेश होकर नाचने लगे, वे अपनी कांख पर हथेली लगाकर आवाज निकालने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के शुद्ध रस की इस व्याख्या को सुना तो दिव्य भाव में मग्न होकर नाचने लगे। जब महाप्रभु रसावेश से नाच रहे थे तब स्वरूप दामोदर गा रहे थे तो महाप्रभु ने कहा गाते रहो गाते रहो। फिर महाप्रभु ने अपने कान फैला दिए और सुनाओ मुझे वृंदावन की महिमा। इस तरह वृंदावन के गीत सुनकर महाप्रभु का प्रेम जागृत हुआ और उन्होंने पुरुषोत्तम ग्राम अर्थात जगन्नाथपुरी को भगवत प्रेम से आप्लावित कर दिया। अंततः लक्ष्मी देवी अपने घर लौट गई। अभी महाप्रभु नाच ही रहे थे कि तीसरा पहर हो गया। इस तरह से श्री चैतन्य चरितामृत में यह सुंदर हेरा पंचमी उत्सव का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है जिसके द्वारा हम सचमुच में वृंदावन को जान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री श्री राधा कृष्ण को जानना है तो महाप्रभु की कृपा के बिना जाना नहीं जा सकता पूर्ण तरीके से। ये जो अंतरंग लीला है श्री भगवान श्री कृष्ण की, इदं तुते गुह्यतमम, बड़ा गुह्य ज्ञान है ये, वेदों में गुह्य, इवन मुक्तात्माओं के लिए गुह्य, ये गुह्य ज्ञान महाप्रभु ने ऐसे बांट दिया। कैसे? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु का पांच प्रमुख शिक्षा है जो उन्होंने दिया। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, आराध्य भगवान, एकमात्र आराध्य भगवान है हमारे ब्रजेश तनय, वृंदावन के कृष्ण ब्रजराज श्री कृष्ण। तद्धाम वृंदावनम, वृंदावन की महिमा, कैसे वृंदावन भगवान से अभिन्न है। रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गे नवा कल्पिता, और सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है वो व्रजवधुओं का है यानी गोपियों का है कृष्ण के प्रति। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम, अगर इसे जानना है तो एक ग्रंथ का अध्ययन करना जरूर, और वो है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। ये प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम अमल प्रमाण। प्रेमापुमार्थो महान, और जीवन का सर्वश्रेष्ठ है पंचम पुरुषार्थ, वह है कृष्ण प्रेम। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरह नापरह, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इससे बढ़कर और कोई चीज न हुआ है न होगा, और ये महाप्रभु का योगदान है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। सो कृष्ण को जानना है तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जानना है, बहुत सरल है। और अगर चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो कलयुग में श्रील प्रभुपाद जी ने, उनके सेनापति भक्त ने इस इतनी सुंदर इतनी सरल तरीके से हमें ये ज्ञान दिया है हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भक्तों के संग में आकर हरिनाम कीर्तन के द्वारा, यही उत्सव है हमारा। एक्चुअली ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण आंदोलन में जो भी है, सारे उत्सव एक ही होते हैं, जहां हरिनाम हो वही सब कुछ है। परमामृतम जीवनम भूषणम, जैसे सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये परम अमृत है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा आभूषण है, यही हमारा सर्वस्व है। तो इस तरह से ये सुंदर लीला के द्वारा महाप्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से ये ब्रज का रस जो है, वृंदावन की महिमा, भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंग लीलाएं हैं गोपियों के साथ ब्रज में, उसको हम जैसे कलयुग के बद्ध जीवों के लिए भी प्रस्तुत कर दिए। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है हम पर कि हम हर हफ्ते आते हैं और सुंदर तरीके से उत्सव मनाते हैं, हरिनाम लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भक्तों का संग का आनंद लेते हैं, इस तरह से हमारा जीवन सफल हो सकता है। श्री वक्रेश्वर पंडित की, श्री श्री हेरा पंचमी महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे, धन्यवाद। हरे कृष्ण।